समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, द वीकेंड हैज स्टार्टेड, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग प्लान्स बना रहे होंगे वीकेंड पे कहाँ घूमा जाए कहाँ घूमा जाए। तो मुकेश, आपको ज्यादा घूमना कहाँ अच्छा लगता है? कोई लोग मूवीज देखते हैं, कोई लोग मॉन्यूमेंट्स पे जाते हैं। आई एम अ वेरी मॉन्यूमेंट लवर यू कैन से मुकेश, और मेरा बड़ा दिल चाहता है, स्पेशली कल तो दिल्ली का मौसम भी कितना अच्छा हो गया, यू नो, विंड्स एंड रेन और
आज मिला के दिल्ली में ही घूमा जाए।
राइट, और दिल्ली में भी इफ यू लुक अराउंड देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, यू नो, बी इट ऑफ कोर्स द रेड फोर्ट इज देयर, हुमायूंस टॉम्ब इज देयर, जो कि एक ऑब्वियसली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बट आप सोच रहे हैं अगर लिसनर्स दैट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट मॉन्यूमेंट्स टुडे, वेल यू विल गेट टू नो मोर इन आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एड्रेस द नेशन एट 8:30 टुनाइट।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित।
यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल टू फैसिलिटेट कंटिन्यूअस मैरिटाइम इंश्योरेंस कवरेज। ऑल्सो अप्रूव्स रिलीज ऑफ एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January दिस ईयर। कैंपेनिंग इंटेंसिफाइज फॉर असेंबली इलेक्शंस इन तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने अमरावती यौन उत्पीड़न मामले की जांच की प्रगति की समीक्षा की।
US extends waiver from sanctions to buy Russian oil by 1 month।
नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने गगन थापा गुट को आधिकारिक नेपाली कांग्रेस के रूप में मान्यता दी।
And yes, as always, we open the show with a very special segment, Dateline India. And Mukesh, हम लोग शुरुआत में कह रहे थे ना कि किसी monuments घूमने के ये दिल चाह रहा है, तो बहुत ही important day है आज। Yes, today is World Heritage Day, and that is the topic for our segment, Dateline India today. Yes, incredible India.
जी हाँ, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, कल्पना करें कि आप एक विशाल प्राचीन किले के सामने खड़े हैं। विशाल दरवाजे, समय की मार झेल चुकी दीवारें और इतिहास की फुसफुसाहट जो समय के साथ गूंज रही हैं।
Or even picture yourself walking through intricately carved temples, every pillar telling a story, every sculpture frozen in time. Or maybe a peaceful natural site where rivers flow and mountains stand tall. Feels magical, isn't it? Like stepping into a living postcard from the past.
आज का दिन ठीक इसी के बारे में है। आज 18 अप्रैल है, विश्व विरासत दिवस। इसे स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा दिन है जो हमारे सांस्कृतिक और प्राकृतिक खजानों का उत्सव मनाने और उनकी रक्षा करने के लिए समर्पित है।
That's right, Mukesh. And in fact, heritage isn't just about old buildings or monuments. It's also about identity, stories and the legacy we inherit.
बिल्कुल, शानदार किलों और प्राचीन खंडरों से लेकर जंगलों, नदियों और परंपराओं तक, इनमें से हर एक हमारी पहचान का एक हिस्सा है।
And now let me ask you, Mukesh, that have you ever visited a place that made you pause and just feel the history around you?
जी हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसे कई धरोहर स्थल देखे हैं और एक ऐसा अनुभव मिला है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा लगता है मानो आप समय की यात्रा पर निकल पड़े हों। यह कुछ ऐसा है कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको विरासत की आवाज सुनाई देगी। यह हमें उन कहानियों से रूबरू कराता है कि हम कौन थे, हमारे आदर्श क्या थे और सदियों के सफर में हमने किस तरह डटकर हर मुश्किल का सामना किया। और यही बात आज के दिन को इतना खास बनाती है ना? तो सायरा, क्या तुम्हें इस दिन के पीछे का इतिहास पता है?
Well, इसके पीछे का इतिहास तो बताएंगे, बट आपने कहा ना कि there are some places where you know you just pause and it appears that time has frozen in that moment. And Rabindranath Tagore ने जैसे ताजमहल के लिए कहा था ना, it's a tear on the cheek of time. And even I felt so when I looked at the Taj for the very first time, a beautiful white marble shining. आप एकदम से वो दिखता है, you know, आप बहुत दूर से आ रहे होते, वो जो सड़क है, yes, and the moment you just come on that chabutra and then you are just in awe. So these are of course monuments that, and it is our responsibility to probably preserve them. And now if we talk about the history behind World Heritage Day, well, now let me take you back to the year 1982. This special day was first started by ICOMOS, yes, the International Council on Monuments and Sites, with a powerful idea to celebrate and protect our cultural heritage. And the idea gained so much importance that just a year later, in 1983, UNESCO officially adopted it. Since then, it's been recognized globally.
UNESCO ने वर्ष 1972 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन किया। ये सम्मेलन मूल रूप से एक वैश्विक समझौता है। ये विभिन्न देशों को इस बात पर मार्गदर्शन कराता है कि उन स्थलों की पहचान, सुरक्षा और रखरखाव कैसे किया जाए, जो इतने विशेष हैं कि वे विश्व धरोहर सूची में जगह पाने के हकदार हैं।
That's right. I think UNESCO is doing a great job. But in the recent times, जो conflict दुनिया में चल रहे हैं, उसके देखते हुए भी बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं that even in times of war, UNESCO का क्या role होना चाहिए, मुकेश? Because we have seen in the Iran conflict कि कितनी पुराने 7,000 पुराने जो Zoroastrians उनके palaces रहे, inscriptions रहे, unfortunately even they were damaged. But here is the where UNESCO should probably think over that in times of conflict, what should it do? तो वहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण कुछ स्टेप उठाना चाहिए। एंड समथिंग इंटरेस्टिंग दैट इंडिया जॉइंड द कन्वेंशन इन नवंबर 1977, बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल मिशन टू सेफगार्ड हेरिटेज। एंड हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट एग्जैक्टली मेक्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट?
जी, बहुत अच्छा सवाल है। विश्व धरोहर स्थल पृथ्वी पर मौजूद ऐसे विशेष स्थान हैं जिनका पूरी मानवता के लिए असाधारण महत्व है। ये सांस्कृतिक, प्राकृतिक या फिर दोनों का मिला जुला रूप भी हो सकते हैं।
That's right, Mukesh. These sites are protected under an international agreement led by UNESCO, which carefully selects places that are culturally, historically और साइंटिफिकली इम्पॉर्टेंट। और जैसे कि हमने दिल्ली की बात करी तो हुमायूं टूम्ब अगर आप नहीं गए तो वहां जाइए, दैट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को।
बिल्कुल सही। और जब हम भारत की बात करते हैं तो इस देश ने पिछले कुछ वर्षों में विश्व धरोहर के नक्शे पर सचमुच अपनी एक खास पहचान बनाई है।
But do you know where it all began, Mukesh? Well, India's journey started back in the year 1983 with the listing of the Agra Fort. Soon after came some of the most iconic landmarks in world, like the breathtaking Taj Mahal, of course, along with the magnificent Ajanta and Ellora Caves.
ये जगह सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, बल्कि ये इतिहास के जीवंत हिस्से हैं। ये सीखने की जगहों के तौर पर काम करती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति, कला और विरासत को समझने में सहायता करती हैं। इसलिए जब भी हम इन जगहों पर जाते हैं या इनके बारे में बात भी करते हैं तो असल में हम इतिहास को जिंदा रख रहे होते हैं।
That's right, Mukesh. And Archaeological Survey of India, or ASI, safeguards around 3,686 centrally protected monuments, supported by strengthened conservation systems and scientific restoration methods.
वैश्विक विरासत के नक्शे पर भारत की मौजूदगी काफी मजबूत हुई है। यूनेस्को की सूचियों में शामिल स्थल देश की सभ्यतागत विरासत की विविधता और गहराई दोनों को दर्शाते हैं। सबसे नया जुड़ाव मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसे जुलाई 2024 में सूची में शामिल किया गया, भारत का 44वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। ये उपलब्धि उन देशों के बीच भारत की स्थिति को और मजबूत करती है जिनके पास विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है.
And India's expanding UNESCO footprint comprises 36 cultural, 7 natural, and 1 mixed sites that demonstrate how its historic monuments, archaeological landscapes, and living traditions collectively contribute to global heritage.
और सायरा, जब आप विरासत शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या ये महल और किले जैसी इमारतें हैं, या फिर ये त्योहार, संगीत और परंपराएं हैं जो आपके दादा दादी से आपको मिली हैं? तो हम आपको बताते हैं कि ये दोनों ही हैं. भारत में सांस्कृतिक विरासत को मोटे तौर पर मूर्त और अमूर्त रूपों में बांटा गया है.
That's right. अगर अंग्रेजी में कहें तो tangible and intangible. Of course, heritage जो है, जो धरोहर है, वो छुई भी जा सकती है, मसलन you know, in terms of monuments. और जो नहीं भी छू जा सकती, जैसे कि you know, लोक गीत होते हैं,
महसूस कर सकते हैं,
या लॉस्ट रेसिपीज होती हैं जो आपके खानदानों में बुजुर्ग कब से आपकी बना रहे हैं, लेकिन बिकॉज क्योंकि इतना ज्यादा इलेबोरेट होती थी तो कहीं ना कहीं दे बिकम लॉस्ट, बट दे ऑल्सो आर हेरिटेज. एंड यू नो, कमिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ अवध, आई बिलीव मुकेश की इतना ही सारी, मतलब हम लोग की इंडिया इज सो ब्लेस्ड कि किसी भी कोने में आप जाइए और थोड़ा उसको सतहों से नीचे खंगालेंगे ना, तो उसकी बोली में, उसकी भाषा में, उसकी पहनावे में, उसकी यू नो आदत अतवार में, वो सब कुछ हेरिटेज है. सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थिंग दैट वी ऑल, इट्स आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व इट. एंड लेट्स स्टार्ट विद द टैंजिबल हेरिटेज. मुकेश, टैंजिबल इट सिंपली मीन्स समथिंग दैट यू कैन सी एंड टच. थिंक अबाउट आइकॉनिक लैंडमार्क्स लाइक द ताजमहल, द सांची स्तूपा और आवर एंशियंट टेम्पल आर्किटेक्चर. दीज आर नॉट जस्ट स्ट्रक्चर्स, they represent history, art and identity. And according to UNESCO, such sites have what's called the outstanding universal value. That means they are important not just for India, but for the entire world. In India, we have the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958. That's quite a mouthful. Well, it is, and under this law, the Archaeological Survey of India, known as ASI, can declare monuments as protected. They also regulate construction around these sites and ensure proper conservation. So those no construction zone signs that we see, well, they are definitely there for a reason.
जी हाँ, अब हम ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे आप छू तो नहीं सकते, लेकिन उसका अनुभव जरूर कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या ICH की. ये जीवंत परंपराएं हैं, जैसे कि प्रदर्शन कलाएं, रीति रिवाज, त्योहार, मौखिक परंपराएं और यहाँ तक कि पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां भी. योग, वैदिक मंत्रोच्चार और लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार जैसी चीजें इसके बेहतरीन उदाहरण हैं. यूनेस्को इन्हें ऐसी प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें समुदाय अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं और ये लगातार विकसित होती रहती हैं, और यही बात इन्हें और भी खास बनाती है. ये समय में स्थिर नहीं है, ये हमारे साथ साथ बढ़ती हैं, और स्मारकों की तरह ही इन परंपराओं को भी संरक्षित किया जाता है. भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन 2003 का पालन करता है.
Plus, there are national initiatives also and even constitutional support like Article 29, which helps preserve cultural diversity. And Article 51AF of the Constitution enshrines the fundamental duty of every citizen to value and preserve the rich heritage of India's composite culture. This provision reinforces that heritage conservation is not only a state responsibility, but also a collective societal obligation, encouraging public participation in preservation efforts.
जी हाँ, संविधान की 7वीं अनुसूची विरासत संरक्षण के मामलों में केंद्र और राज्यों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन प्रदान करती है. एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम, जो हमारे सरकारी और निजी भागीदारों को एक साथ लाकर मशहूर स्मारकों पर आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाता है. आगरा का किला, कुतुब मीनार, अजंता गुफाएं, लाल किला और मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जैसी जगहों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सुविधाओं और बेहतर साइट मैनेजमेंट से फायदा हुआ है. तो क्या विरासत का मतलब सिर्फ पुरानी इमारतों को बचाना है, या ये कुछ ज्यादा जीवंत और गतिशील है?
That's definitely a question to ponder on, because today India's approach to heritage preservation is no longer just about maintaining the past, it's also about shaping the future. There's a growing understanding that heritage isn't just inherited wealth, it's an active asset that influences how we see ourselves as a nation.
बिल्कुल सही है, और ये अगर हम पिछले दशक पर नजर डालें तो बदलाव वाकई जबरदस्त रहा है. संरक्षण के प्रयास न सिर्फ पैमाने के लिहाज से बढ़े हैं बल्कि उनमें काफी बारीकी और कुशलता भी आई है। हम सिर्फ इमारतों की मरम्मत ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों, उन्नत तकनीकों और सुव्यवस्थित कार्य प्रणालियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
That's right, and let's not also forget the role of institutions here, Mukesh. The ASI has really strengthened its capacity and ensuring that over 3,600 protected monuments are cared for in a structured and sustainable way, and that's of course not a small task. And preservation isn't just about the responsibility of institutions, it's also a shared commitment, and perhaps that's where the future of heritage truly lies, that is with all of us.
और श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले कहाँ चलेंगे सारा?
Well, Mukesh, we are starting our journey from a very, very less known, you can say, site in Orissa, the Gandhamardhan Hills in Paikamal under Bargarh district of Western Orissa. They offer a sacred parikrama where mythology, nature and heritage come together in a truly unique way. So let's hear more from our correspondent.
Deeply associated with the Ramayana, these hills are believed to carry echoes of ancient legends and are widely known for their rich variety of medicinal plants, many of which have been used in traditional healing practices for centuries. The Parikrama route connects the two major pilgrimage, Nrisinghanath Temple and Harishankar Temple, making the journey both spiritually enriching and visually captivating. Devotees, nature lovers and trekkers walk along this path, experiencing a rare blend of devotion and natural beauty. Along the route, the hills quietly reveal signs of an ancient civilization. Scattered stone sculptures, inscriptions, and rock carvings speak of a rich historical past. However, many of these treasures remain unexplored and have not yet been fully documented, adding a sense of mystery to the region. Despite its immense cultural, ecological, and archaeological importance, Gandhamardhan still lacks adequate conservation efforts. Locals and environmentalists have been increasingly demanding that the region is declared an eco-sensitive zone to ensure its protection. The Gandhamardhana Parikrama is not just a physical journey, it is a walk through history, faith and nature, reminding us of the urgent need to preserve this priceless heritage for future generations. For Parikrama, Supriti Mishra, Akashvani, Sambalpur.
और सारा, अब श्रोताओं को ले चलते हैं छत्तीसगढ़। नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होने के बाद छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से लोकतंत्र की एक नई और सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। यहां नक्सल पुनर्वास केंद्र हैं और रह रहे आत्मसमर्पित माओवादियों ने अब बंदूक छोड़कर लोकतंत्र का रास्ता अपनाया है। जिला प्रशासन ने 116 पुनर्वास युवाओं के लिए मतदाता परिचय पत्र पहचान बनाकर उन्हें मतदान का अधिकार दिलाया है। तो सुनते हैं अपने संवाददाता की रिपोर्ट।
आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्य धारा में शामिल हुए ये युवा मतदाता परिचय पत्र बनने के बाद अब पंचायत से लेकर विधानसभा तक अपने जन प्रतिनिधियों का चयन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वे भविष्य में स्वयं भी चुनाव लड़ने के पात्र बन गए हैं। यह बदलाव उनके जीवन में सम्मान और आत्मविश्वास की नई शुरुआत है। प्रशासन ने इन युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया है। साथ ही उन्हें कृषि, सिलाई, वाहन संचालन और अन्य क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। सुकमा की यह पहल बताती है कि सही दिशा और अवसर मिलने पर बदलाव संभव है। यह लोकतंत्र की ताकत और विश्वास की एक सशक्त मिसाल है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
The Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research in Puducherry is celebrating a major milestone, Mukesh. Well, marking 50 years of excellence in medical education through its Department of Medical Education, which was formerly known as the National Teacher Training Center. Established in the year 1975 by the Ministry of Health and Family Welfare, with support from the WHO, the center was the first one of its kind in India. Over the decades, it has emerged as the mother center of medical education, laying the foundation for similar institutions across the country. Let's hear more from our correspondent.
A defining feature of the legacy of NTTC is the uninterrupted conduct of the National Course on Educational Science for Teachers of Health Professionals since 1976, a unique national-level faculty development program sustained for 5 decades. Through these initiatives, JIPMER has trained more than 2,500 faculty members from across India and neighboring South Asian countries, strengthening the quality of medical education and healthcare delivery. The department's evolution in 1994 and its recognition as a regional center in 2015 and a nodal center in 2023 have further reinforced its leadership in curriculum development, faculty training, and educational research. Talking to Akashwani, JIPMER Director Dr. Veer Singh Negi said that the journey of NTTC and the Department of Medical Education reflects JIPMER's enduring commitment to excellence in teaching, innovation, and capacity building. Looking ahead, JIPMER's Vision 2030 aims to establish a center of excellence in medical and health professions education and expand global partnerships. For Parikrama, this is Bibel Asnath, Akashwani News, Puducherry.
और अब पुदुचेरी से मुकेश चल रहे हैं मेरी फेवरेट जगह गोवा. यस, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हैज स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग गोवास ट्रेडिशनल फूड कल्चर, calling it essential for good health and well-being. He was speaking at the inauguration of the G Food Fest in Panaji yesterday. Let's hear more from our correspondent Mahesh Chopra.
Highlighting the nutritional value of Goan cuisine, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that traditional food habits help maintain good health and prevent lifestyle diseases. He noted that rising cases of diabetes and dialysis-related illnesses are linked to poor dietary choices and lack of nutritious food. He urged people to move away from unhealthy eating habits and return to traditional Goan food. Drawing a comparison, he said, just as Koreans have successfully promoted their food culture globally, Goans too should showcase their rich culinary heritage and its health benefits to the world. The Chief Minister added that women can play a key role in preserving and promoting this tradition. The G Food Fest has been organized by the Goa State Rural Livelihood Mission to promote traditional cuisine, local produce, and handicrafts, while also providing a platform for self-help groups to market their products. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
And well, in Kerala, the renowned Shabrimala Ayyappa Temple will close at 10 p.m. today, marking the culmination of the 8-day annual Vishu festival. The temple, which opened on 10th of April, witnessed a heavy flow of pilgrims for Vishu and monthly pujas. The Vishu Karni Darshan was held in the early hours of Wednesday, with devotees gathering to view the auspicious arrangements before the deity. The temple will reopen on 14th of May for the 5-day monthly puja.
और कार्यक्रम में वक्त हो चला है खेल के मैदान की ओर चलने का. तो जानते हैं वहां की हलचल. तो सबसे पहले T20 क्रिकेट की बात करते हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच कल डर्बन में खेला जाएगा. डर्बन में कल हुए पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया.
And if you talk about IPL, well, host Royal Challengers Bengaluru were 145-4 in 14.4 overs against Delhi Capitals in the league match at M. Chinnaswamy Stadium when reports last came in. In the second match, Sunrisers Hyderabad will take on Chennai Super Kings, Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad this evening at 7:30 p.m.
और अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
On the 18th of April 1930, the Chittagong Armory Raid was carried out under the leadership of Master Da Surya Sen.
Armory ko guard karne ke liye sirf mutthi bhar sipahi maujood the. Goron ko lagta tha ki koi Hindustani unki hukumat ke ek meel door tak bhi nahi phatak sakta.
Surya Sen and his fellow freedom fighters were part of a revolutionary group of nationalists called Indian Republican Army, who believed in using force to fight the British. The group included Ganesh Ghosh, Loknath Bal, Ambika Chakraborty, Hari Gopal Bal, Ananta Singh, Anand Prasad Gupta, Tripura Sen, Bilash De, Bidubhushan Bhattacharya, Preetilata Vadidar, Kalpana Datta, Himanshu Sen, Vinod Bihari Chaudhary, Subodh Roy, and Monoranjan Bhattacharya.
The armory in police line in Dampada was captured by a group of revolutionaries led by Ganesh Ghosh, while another group led by Loknath Bal took the auxiliary forces armory.
We didn't need to use one gun. Never!
AFI armory se machine guns lane ki zimmedari Loknath da aur Nirmal da ki thi.
The revolutionaries succeeded in cutting telephone and telegraph wires and disrupting train movements. However, they failed to locate ammunition.
About 16 of the group captured the European club's headquarters in Pahar Tali. After the raids, the revolutionaries gathered outside the police armory, where Surya Sen took a military salute, hoisted a national flag and proclaimed a provisional revolutionary government.
इसी वक्त कुछ देर पहले यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा. ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया, झिझोड़ दिया. पर ये किसी ट्रेन फौज ने नहीं किया है, ये किया है कुछ चंद बच्चों, तुम लोगों ने, तुम सब ने, तुम सब उसके हिस्से हो. इतिहास अगर कुछ याद रखेगा तो सिर्फ इस बात को, इसके अलावा कुछ नहीं.
दस Chittagong was free for 4 days from the British Raj. But when the British sent reinforcements, the revolutionaries left Chittagong town and marched towards the Chittagong Hill Ranges and continued the battle from Jalalabad Hills.
We also remember freedom fighter Tatya Tope, who was executed by the British on the gallows on the 18th of April, 1859. One of the most notable generals in the First War of Indian Independence of 1857, Tatya lacked formal military training, but is widely considered as the best and most effective generals of the independence movement.
Tatya was born in 1814 in Pune, Maharashtra. His father, Pandurang Rao Tope, shifted to Bithur in Kanpur, where Tatya became a close friend of Nana Sahib. Tatya Tope also came in close contact with Rao Sahib and Rani Lakshmibai.
In May 1857, when the political storm was gaining momentum, Tatya won over the Indian troops of the East India Company stationed at Kanpur, established Nana Sahib's authority on them, and became the commander-in-chief of the independence activists.
After the British reoccupation of Kanpur, Tatya Tope, with the support of the Gwalior contingent, forced General Windham to retreat from Kanpur. When Jhansi was besieged by the British forces, Tatya Tope shifted his headquarters to Kalpi.
With 20,000 men, he came to the rescue of Rani Lakshmibai. Later on, Tatya sieged the fort of Gwalior with the help of the Gwalior contingent, but he was defeated by General Hugh Rose.
Tatya had a natural instinct for guerrilla tactics and evaded British pursuits for 10 months in Rajasthan, Malwa, Bundelkhand and Khandesh, in the marathon chase of about 2,800 miles through forests and hills.
He was eventually betrayed by his trusted friend Man Singh on the 8th of April, 1859. Tatya was convicted and executed at Shivpuri on the 18th of April, 1859.
Tatya Tope continues to live in his legends and folklores. We salute the great martyr.
और आज संस्कृत के विद्वान और प्राच्य विद्या विशारद डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे की पुण्यतिथि है। भारत की अति प्राचीन वैदिक भाषा के रूप में यदि आज संस्कृत को विश्व की सभी भाषाओं की जननी माना जाता है और भारत की अति प्राचीन धर्म संस्कृति को यदि विश्व भर में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो उसमें महान भारतीय संस्कृतज्ञ और विद्वान पंडित डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे की अमूल्य योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता.
Next on our list, a very fine actress of yesteryears, और खासतौर से character roles की तो नहीं कह सकते हैं कि भारत ही हासिल कर ली थी. We are talking about Lalita Pawar, whose birth anniversary is today.
जी हाँ, हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री. उन्होंने अभिनय की यात्रा का 7 दशक लंबा सफर तय किया. भारतीय नारी का जीवन जीते हुए एक संजीदा कलाकार जिन्होंने सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी, जिनमें जंगली की सख्त माँ, श्री 420 की केला बेचने वाली और आनंद की संवेदनशील मातृ छवि और अनाड़ी की मिसेज डिसूजा सहित अनेक चरित्रों की जीवंत छवियों को कैसे भूला जा सकता है. रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण धारावाहिक में मंथरा की भूमिका को सजीव भी ललिता पवार ने ही किया था.
ये तो मुर्शिदाबाद की साड़ी है. बनारस की?
अरे यार, पर तू क्या जाने कि मुर्शिदाबाद बनारस से भी आगे है.
बहन जी, अगर आपको ये साड़ी पसंद है तो आप ले लें.
हाँ, ये क्यों ले ले, घर में छोटी का हाथ पहले. तुम रखो, जा.
Today is also the birthday of Poonam Dhillon. बहुत ही प्यारा सा चेहरा एक आया था मैं हिंदुस्तान के सिनेमा के ऊपर. And of course, we are remembering her on her birthday today. She acted in some very well-known films like Red Rose and Sony Mahiwal, Samandar. Of course, Karma. तो क्यों ना एक खूबसूरत सा गाना सुना जाए.
तो तो श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुज्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।